आज का प्रातः क्लास है 5 जुलाई 1968। बाप बैठ यहाँ समझाते हैं, तब समझाते हैं जब कि इस शरीर पर सवार है। बच्चे जानते हैं कि बाप इस रथ द्वारा ही अपना परिचय देते हैं। और सत्य चक्र का ज्ञान भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, देखते हो रथ पर बाप विराजमान है। इस बाप ने ही सारी सत्य चक्र का राज समझाया। और ये बाप सन्मुख बैठे, हम बाप को याद करते हैं तो बाप भी बच्चों को याद करते हैं। उन बच्चों को याद करते हैं जो मददगार बनते हैं। अच्छा, अभी तो बाप सन्मुख है, समझो जैसे मम्मा बैठती थी, कहती थी बाप को याद करो। भाई भी बैठते हैं, भाई बहन को अर्थात फीमेल के रूप में बैठा हुआ देखते हैं। तो तुम बच्चे किस प्रकार याद करते हो, किसको याद करते हो और कैसे याद करते हो? बुद्धि कहाँ जाती है? तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है या जिस रथ में शिव बाबा आते हैं उनको याद करते हो, या कि समझते हो कि बाबा परम धाम में रहते हैं और अभी इस रथ पर आने वाले हैं? क्या समझते हैं? उस समय तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या आता है, क्या क्या याद करते हो? अनुभव बताओ। अथवा अपने घर में जाते हो तो कैसे याद करते हो? बाप को याद करते हो तो बाबा को ऊपर में याद करते हो या इस रथ में याद करते हो? इस रथ में याद करते हो गोया बाप दादा को याद करते हो? बताओ। ये तो बेहद का बाप है और ये तो यहाँ बैठे भी सारे विश्व को याद करते हैं। उसमें भी इन पार्टिकुलर और इन जनरल बात भी है। पार्टिकुलर अर्थात जो सन्मुख है उनको याद करते हैं, और सन्मुख होने वालों में भी जो जास्ती सर्विस करते हैं उस तरफ बुद्धि जाती है, नजर जाती है। उनको अच्छी रीति देखते हैं, प्यार करते हैं, बाकी औरों को तो ऐसे ही देख लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जिनकी यहाँ बैठे भी बुद्धि और तरफ चली जाती है। उसमें भी जो अच्छे अच्छे सबसे उन बच्चे हैं वो भी शिव बाबा को रथ सहित जरूर याद करेंगे। अच्छे अच्छे है तो कैसे याद करेंगे? रथ सहित याद करेंगे। रथ बिगर तो याद कर ही नहीं सकते। और बाप भी बच्चों को याद करेंगे रथ सहित। फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, फलाना कहा है तो कोई नाम याद आता है ना? और नाम आत्मा का होता है या शरीर का होता है? तो शरीर भी जरूरी याद आएगा। वो बच्चे भी बाप को याद करके बाप के लिए सर्विस करते हैं। इसलिए बाप भी कहते हैं कि बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। चंद्रमा के नजदीक भी सितारे होते हैं, कोई नजदीक भी होते हैं कोई दूर दूर भी होते हैं। ये क्यों लगा दिया है? चंद्रमा के भी क्यों लगा दिया? हाँ, कोई बच्चे ज्ञान सूर्य के भी नजदीक है और कोई बच्चे चंद्रमा के भी नजदीक है, कोई दूर होते हैं। उनमें भी बल कोई कितना भी दूर हो फिर भी याद तो जरूर आएगा। ये बच्चा भी लाइट में रहता है परंतु बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। फलाने की आत्मा गांवड़े में अच्छी सर्विस कर रही है। तो जो जैसी सर्विस करते हैं, कोई मनसा करते हैं कोई वाचा करते हैं कोई कर्मणा करते हैं। और कर्मणा में तो बहुत प्रकार की सर्विस आ जाती है। स्थूल तन की, धन की, तो ये सभी बातें बाप ध्यान में रखते हैं। बुद्धि में आता है ये बच्चा धन की बहुत मदद करता है, धन की मदद करता है, बल खुद इतना पुरुषार्थ नहीं करता है। अवस्था इतनी अच्छी नहीं है परंतु उनके धन से बहुतों का कल्याण हो रहा है। बल ज्ञान नहीं है फिर भी कहेंगे धन से सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। कोई ऐसे भी आते हैं कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, बाकी धन की मदद हम दे सकते हैं। तो वहां जाकर क्या बनेंगे? हाँ, कोई साहूकार बन जाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पारिवारिक संगठन में भी नहीं बैठते हैं, ज्ञान योग की क्लास भी नहीं करते हैं, तो भी कहाँ आ जाएंगे? तो भी साहूकारी पजा में आ जाएंगे। बाबा की बुद्धि में रहता है, किने के धन से फिर बाबा यूनिवर्सिटी खोलेगा और क्या करेंगे, क्योंकि बाप तो नाली से फूल है ना, और नाले जो पवित्रता के लिए भी देते हैं, कहते हैं मुझे पवित्रतम को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जावेंगे, मैली आत्मा पावन बन जावेगी, अर्थात तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। बाप अभी तो यहां का रहवासी है ना, वो बाप हम सभी आत्माओं का बाप है, सुप्रीम सोल है, सुप्रीम बाप है, तो उनको ही याद करना है, उनको कह करके दूर क्यों कह दिया, क्योंकि वो सुप्रीम सोल बाप जिस समय वाणी चल रही थी उस समय बाप के रूप में पार्ट नहीं बजाए रहा था, इसलिए ये नहीं कहा इनको याद करना है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के तन में पार्ट बजाए रहा था, इसलिए बोला, इशारा दिया कि उनको ही याद करना है जो बाप प्रत्यक्ष होने वाला है, उस याद की मेहनत है, बल धंधे याद में रहो, सिर्फ इतना याद करो कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाप को हम मदद करते हैं, सेंटर अथवा कॉलेज खोलते हैं, तो इसमें बहुतों का कल्याण होगा, समझाया जाता है इसका भी तुमको फल बहुत मिलेगा, यहां भी क्यों लगा दिया, जो पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे ज्ञानी है, अच्छे योगी है, अच्छे धारणावान है, परंतु धन की मदद नहीं, इतना धन है ही नहीं, उनको क्या फल मिलेगा है? तो उनको भी मिलेगा, वो राजघराने में आवेंगे, और जो ऐसी मेहनत नहीं करेंगे सिर्फ धन की मदद करेंगे तो बड़े साहूकार बनेंगे, क्योंकि बहुतों का कल्याण तो करते हैं ना, तो इसको कहा जाता है तन से मन से धन से अथवा मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करना। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि कैसे बाप को याद करते हो है? साकार में निराकार बाप को तो याद करते हैं, परंतु याद भी किनको आवेगा? जो अच्छे सर्विस से बोले हैं, चाहे धन से मदद करते हैं, चाहे तन से मदद करते हैं, चाहे मेंसा वाइब्रेशन की मदद करते हैं, वाचा से मदद करते हैं। कर्मेंद्रियों के कर्म से मदद करते हैं। बाप को मदद तो करते हैं, इस बात की मदद, वैश्यालय को शिवालय बनाने की मदद करते हैं। बाप तो बेहद का मालिक है, जहां जहां भी जो जो बच्चे हैं सभी को याद करते रहते हैं। और तुम बच्चों को जो याद करना है एक बाप को, और बाप सभी बच्चों को याद करते रहते हैं। तो जब याद करते हो तो क्या जहां रथ है वहां बाबा को समझ करके ऐसे बाबा को याद करते हो? समझो बाबा बंबई में है तो क्या तुम्हारा बुद्धियोग बंबई में चला जाता है? बुद्धि में आता होगा कि बंबई में बाबा रथ पर विराजमान है, उनको याद करते हो। जो उनका स्थायी स्थान है उस बेहद के बाप के हम बने हैं, और वो बेहद का बाप अभी नीचे आया हुआ है। नीचे आया हुआ है टाकी दुनिया में तो जरूर आवाज करेंगे मनमना भव, ऊपर बैठे थोड़े ही ये आवाज तुम्हारे कान में आवेगा, मनमना भव मेरे में समा जाओ। मना ऊपर परमधाम में है और परमधाम में याद करेंगे तो मनमना भव का अर्थ क्या हुआ है? परमधाम में जब है और उस समय याद करते हैं तो उसका अर्थ हुआ कि एक तो परमधाम में आत्मा जड़बत रहती है, वहां कोई हलन चलन नहीं होती, बोलचाल नहीं होती है। तो क्या जड़बत बनना है? जड़बत तो नहीं बनना है, इसलिए कहा कि जब मैं यहां आता हूं तो कोई रथ में आता हूं, आवाज करता हूं, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है, नहीं तो भक्ति मार्ग में जैसे याद करते हैं उसको याद करते हैं, जड़मूर्ति को याद करेंगे, लिंग को याद करेंगे तो क्या बनते जाते हैं? पत्थर बुद्धि जड़ बुद्धि बनते जाते हैं। तो अभी तो नीचे आए हुए, तब तो पता पड़े ना कि बाबा हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो जहां जहां रथ घूमता फिरता है वहां याद करते रहते हो या मधुबन में याद करते हो? पूछा कहां याद करते हो? कहते हैं बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं, मधुबन के सिवाय और कहीं तो मुरली चलाते नहीं है। तो बाप पूछते हैं तुम कैसे याद करते हो, क्या करते हो? क्योंकि याद करने के लिए रथ तो जरूर याद आवेगा, तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है, परंतु रथ याद आते ही बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि रथ वाली आत्मा के साथ 63 जन्मों का हिसाब है तो ऑटोमेटिक कौन याद आता रहेगा? रथ वाला ही याद आता रहेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि रथ वाला ही याद आता रहे, जरूर पहले रथ याद आवेगा, फिर बुद्धि को मोल्ड करना है। क्या करना है? उस रथ में बाप को याद करो। पांच जुलाई और शक्ति वाणी का दूसरा दिन, बाप भी तो बच्चों को याद करते हैं ना कि फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, तो पहले आत्मा को याद करते हैं। यह शरीर याद आता है, सर्विस करते हैं तो आत्मा थोड़ा ही फुदक फुदक के सर्विस करेगी। सर्विस करेंगे तो शरीर में जो मन है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तन से, धन से याद करेंगे, अच्छी सर्विस करेंगे तो बच्चे याद आते। तो भल कहां भी हैं बच्चे, उनको याद करना पड़ता है। जैसे कहेंगे देहरादून में प्रेम बच्ची है, वो बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, याद तो जरूर शरीर से ही करते होंगे ना। बाप बहुत क्लियर करके समझाते हैं, कहां मुझते तो नहीं हो कि पता नहीं किसको याद करें। अगर सिर्फ बिंदी को याद करें तो कौन सी बिंदी को याद करें? ढेर की ढेर बिंदी रूपी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, पशु पक्षियों की आत्माएं, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं है, तो सब बिंदु, तो किसको याद करें? अरे बाप तो मनुष्य तन में आते हैं ना, काहे के लिए आते ही क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, और ज्ञान मनुष्यों को सुनाया जाएगा या पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों को सुनाया जाएगा? मनुष्य तन में ही आते हैं तो जरूर शरीर को याद करते होंगे। बाप बहुत क्लियर करके समझाते हैं कि ऊपर में याद करना है या इस रथ में याद करना है, नहीं तो रथ में बाप क्यों आया है? अभी तो नीचे है ना, दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है। नहीं जानती है तो क्या करते रहते है? और सर्वव्यापी समझ लेते हैं, बुद्धि भटकती रहती है, और तुम्हारी बुद्धि में तो पक्का निश्चयात्मक ज्ञान बैठ गया है कि बाप अमुक मुकर्रर रथ में आया हुआ है। तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है, तो दुनिया वाले तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं ना, फिर कह देते कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे ऐसे नाम रख करके उनके चित्र बनाई देते। शास्त्रों में जो ढेर के ढेर अवतार बताए हैं, मनुष्यों के भी जानवरों के भी, और नाम भी रखे, तो वो नाम किस आधार पर रखे? आया तो मनुष्य तन में ही है, परंतु जिस मनुष्य तन में आते हैं वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसके लिए कहते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती। तो भक्ति मार्ग में बनाई दिया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाते हैं, अब ये भी नहीं जानते कि आत्मा किसको कहा जाता है। कोई आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली और कोई आत्मा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है, कम जन्मों का पार्ट बजाती है, तो उसे 100% आत्मा कहेंगे है? क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि एक जन्म, दो जन्म या ज्यादा जन्म क्यों कम हुए, क्योंकि देहभानी रहे, बाप ने समझाया तो भी बुद्धि में नहीं बैठा, बना बनाया ड्रामा है हर आत्मा का, जिसमें जितना देहवान होगा वो उतना देहवान का पार्ट जरूर बजा देगा। पक्का आत्मा अभिमानी होगा, ऑलराउंड पार्टधारी होगा, तो अंतिम जन्म में आते आते भी 500 करोड़ के मुकाबले बीज रूपी स्टेज, आत्मिक स्टेज जल्दी से जल्दी धारण करेगा। उसके लिए थोड़े कहेंगे कच्छ अवतार मत्स्य अवतार, तो शास्त्रों में ऐसे ऐसे बहुत नाम रख दिए। बात समझाते हैं, वो सभी भक्ति मार्ग की रंग बातें हैं, और भक्ति मार्ग की रंग बातों की भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही शूटिंग होती है। तो बाप रंग बात और राइट बात दोनों ही बातें समझाते हैं, ये श्रीमती के अनुकूल और ये बात श्रीमती के प्रतिकूल है। तो राइट क्या है वो भी समझाते हैं कि बाप को कहाँ याद करना है, बाप तो यहाँ रथ पर है ना, जहाँ इस दुनिया में रह करके रथ में रह करके सभी की सेवा करते हैं, बच्चों द्वारा सेवा कराते हैं, बच्चे बतलाते भी हैं आज बाबा हमको भक्तों के पास ले चलो, वो भक्त देवताओं की कैसे पूजा करते हैं, वो भक्ति मार्ग में दिखाया गया है। पत्थर की मूर्ति बनाए, उनको श्रृंगार करके कितनी पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार है? भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं वो यादगार कहाँ की है? कैसे पत्थर की मूर्ति बनाए, उनको फूलों से श्रृंगार करते हैं, कितनी पूजा करते हैं। ऐसे ही जब देवियों की विदाई देते हैं तो रोने लग पड़ते हैं। कहाँ शूटिंग होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तो होती है, लेकिन कैसे
आत्मा पत्थर जैसा हीरा बन जाता
है? बेसिक नॉलेज में भी ये शूटिंग होती है कि जिन देवियों की बहुत आव भगत करते हैं और बाद में जब परमात्मा बाप मुकर्ररथ में प्रत्यक्ष होता है तो उन देवियों का तिरस्कार करने लगते हैं, विदाई दे देते हैं। जैसे कोई चैतन्य में बिछुड़ता है ना, तो रोते तो है ना, वैसे ही बड़े बड़े घर वाले मूर्ति को डुबोने पर रोने लग पड़ते हैं। अरे हमने इनके पीछे इतना धन बर्बाद किया था। जैसे उनको डुबोते हैं, नहीं डूबते हैं क्या? डुबोने से नहीं डूबते हैं तो फिर लात मार करके डुबो देते हैं। कितना उनको संगाते, कितना खिलाते पिलाते पहनाते, ये सभी भक्ति मार्ग की भावना है। खर्च तो बहुत होता है ना, फिर जाकर के डुबो देते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदुओं में ही ऐसे करते हैं, मुसलमानों में भी वो लोग कितने बड़े बड़े ताबूत बनाते हैं। उनको ताजिया कहते हैं, बांस में लगा करके बड़ा सा ताज बनाते हैं ना, ताज
लकड़ी में।
इनको बहुत जिम्मेवारी मिली हुई है, सारी ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया को पालना करने की ताजधारी जिम्मेवारी मिली हुई है। बड़े बड़े ताबूत बना करके फिर उनको ले जा करके खलास कर देते। आजकल पैसे कम हो गए हैं मुसलमानों के पास, तो फिर वह संभाल के रख देते हैं, खलास नहीं करते। क्या करते हैं? संभाल के रख देते हैं, फिर 12 मास के बाद मरम्मत आदि करके निकालते हैं। यूं तो मंदिरों में मूर्तियां स्थायी रखी हुई है, परंतु ये खास दिन पर बैठ देवियां बनाते हैं, उनको श्रृंगारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये भक्ति मार्ग की बार बार वही बातें याद क्यों दिलाते हैं? है? संगम युग में वही बातें बार बार रिपीट होती रहती है अज्ञानता के कारण। तो बताया ये भी अज्ञान है ना। अभी तो बाप सन्मुख कहते हैं क्या? अभी पहले सन्मुख नहीं कहते थे। कैसे कहते थे? ब्रह्मा द्वारा कहते थे। तो उतना समझ में किसी को नहीं आता था। और अभी तो बाप सन्मुख कहते हैं कि तुमको कितने पैसे याद दिए और कितना तुम धनवान थे। जब सन्मुख बाप आते हैं तो एडवांस में कितना धन देते हैं? है? बहुत अतिचार धन देते हैं। फिर क्या होता है? फिर जो भी धन लेने वाले हैं एडवांस ज्ञान में चलने वाले सतो प्रदान से नीचे उतरते उतरते क्या बनते हैं? अभी कितने कंगाल बन पड़े। ये कंगालपना कहां से आ गया? अरे कहां से आया? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तो देवियों की पूजा की या कोई दादाजी की दादागिरी में चले उनकी पूजा की, ये शरीर है तो जड़ मूर्तियां ना, तो शूटिंग हो जाती है। तो बाप ये सब बातें सन्मुख बैठ समझाते हैं। पहले ब्रह्मा के द्वारा सुनाते थे, बच्चे सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, क्योंकि बाप सन्मुख टीचर के रूप में नहीं था। और अभी तो समझाते भी हैं। इनका रथ तो मुकर्रर है और इन द्वारा ही समझाते हैं। इनका है कब की वाणी है? वाणी तो पुरानी है, जिस समय ब्रह्मा बाबा जीवित थे। तो कैसे ये बात लागू होती है? इनका रथ तो मुकर्रर है भविष्य में, मुकर्रर रहेगा। शरीर छूट गया फिर भी मुकर्रर है। मुकर्रर है का मतलब कल पहले भी यही रथ था और अभी भी यही मुकर्रर रथ हुआ। फिर अगर इस कल्प में कहें, इसलिए इनका कहा, इसका नहीं कहा। क्या कहा? इनका मन राम और कृष्ण दोनों आत्माओं का, इन द्वारा ही समझाते हैं। कब कब कोई और के रथ में भी जाकर के किस किस पॉइंट पर समझाता हूं। परंतु वो पता नहीं पड़ता। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ने इस रथ द्वारा ही अपना परिचय दिया है। क्या फर्क हुआ? और बच्चों में समझाते तो है लेकिन अंतर क्या बताया? विसरथ द्वारा मुकर्र रथ द्वारा अपना परिचय देते हैं और रथों के द्वारा समझाते हैं, उसमें अपना परिचय नहीं देते। मैं जब इस रथ में आता हूं तो मुझे कोटों में कोई पहचान नहीं। कोटों माने करोड़ों, पहचान करने वाले हैं, पहचान करने का पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो करोड़ों की तादाद में होते हैं, परंतु उनमें से सब नहीं पहचानते, कोटों में से कोई ही निकलते। बाकी मुझे याद तो सभी करते हैं। भारतवासी खास याद करते हैं और दुनिया आम याद करती है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि बाबा अभी नीचे आया हुआ है। परम धाम की ऊंची स्टेज छोड़ करके नीचे की दुनिया में आया हुआ है। आते हैं या वाह नहीं आते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। न जानने के कारण परमात्मा को ही पत्थर ठिक्कर में ठोंक देते हैं। पत्थर में ठोंक देते हैं माना कैसे शूटिंग होती है? पत्थर बुद्धियों में भी समझ लेते हैं कि भगवान बाप आता है, ठिक्कर में जिनको थोड़ी सी माया की ठोकर लगे या प्रकृति के प्रकोप की थोड़ी सी ठोकर लगे और ज्ञान में से टूट पड़ते हैं। जैसे ठिक्कर मिट्टी का ढेला ठोकर लगने से बिखर जाता है, भीतर बुद्धियों में समझ लेते हैं। भीत कहते हैं दीवाल को, अर्थात ज्ञान मार्ग में दीवाल बनकर के सामने खड़े हो जाते हैं। बाप आकर अपनी पहचान देते हैं और वो बिघन डालते हैं, ये बाप नहीं है। तुम कहते हमारा बाप है, वो कहता हमारा बाप नहीं है। अनिश्चय बुद्धि बनाते रहते, उनको कहते हैं भीत बुद्धि, भीतर। ऐसों में भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं। कोई कोई कहते भी हैं कि अल्लाह गार्डन स्थापन करते हैं, गार्डन में तो सुखदायी फूल होते हैं, दिव्य गुणों की खुशबू वाले फूल होते हैं। अल्लाह ऊंच के ऊंच को कहा जाता है, जो ऊंचा होगा वो सुखदायी दुनिया बनावेगा या दुख देने वाले कांटों का जंगल बनावेगा? जरूर ऊंचते बाप, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच दुनिया स्थापन करते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि अल्लाह गार्डन स्थापन करते हैं, परंतु गार्डन किसको कहा जाता है वो जानते हैं। तो जानते हो कि और कोई भी धर्म को गार्डन नहीं कहा जा सकता, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही अल्लाह का गार्डन कहा जा सकता है। तो वहां जाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पूरा पुरुषार्थ कराते हैं जबकि ये दुनिया कांटों का जंगल बन जाती है। तो यहां रट भी है और बाट भी है। तुम बाहर की दुनिया में जाते हो, वहां रहना पड़ता है, जानते हो कि वहां बाप का रथ तो है नहीं, तो तुम बच्चों को रथ भी जरूर याद करना पड़े। क्योंकि कोई को भी याद करते हैं तो पहले पहले रथ ही याद आता है, उसका चेहरा मोरा याद आवेगा। जानते हो फलानी आत्मा फलाने रथ में बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। सभी आत्माएं अपने अपने रथ पर विराजमान है। उनको अकाल तख्त कहते हैं, इनको है? सब आत्माओं को अकाल तख्त कहेंगे। उनका तख्त अर्थात जहां आत्मा बैठती है भ्रुकुटी के मध्य में, वो कब खलास नहीं होगा, काल नहीं खाएगा, तो काल खा जाएगा। लेकिन जिस मुकर्रर रथ पर बाप विराजमान होते हैं को अकाल मूर्त कहा जाता है। उसकी मूर्ति भी है, अमूर्त नहीं है, अकाल मूर्त है। और उस मूर्ति को काल नहीं खा सकता, इसलिए अकाल मूर्त कहा जाता है। तो ऐसी अकाल आत्मा का ये तख्त है। शरीर को तख्त कहा जाता है, और काल शरीर को खाता है, आत्मा को काल नहीं खाता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ही है, परंतु अकाल तख्त तब कहा जाता है जब संसार में वो प्रत्यक्ष होता है। अकाल मूर्त बाबा जिसकी महिमा गाती है, महिमा तभी गाई जाएगी, गायन तभी करेंगे जबकि कुछ करके गया हो। तो तुम कहां भी रहेंगे, ऐसे अकाल तख्त रथ को जरूर याद करेंगे। रथ को भी याद करेंगे और बाप को भी याद करेंगे। ये भी तुम जानते हो इस रथ के फिर साकार में भी हम बच्चे हैं। कैसे रथ के बच्चे कैसे? अरे सारी दुनिया का जरूर एक बाप होगा, और वो बाप ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी बाप न हो। हिंदुओं में तो मान्यता है एक ही देवता की, ऐसी मान्यता है जिसको कहते हैं शंकर, कि उसका कोई बाप नहीं होता। इसलिए फिर भक्ति मार्ग में भी शिव को शंकर के साथ मिलाए कर रख दिया है। क्योंकि शिव बाप जब आते हैं तो बहुत याद करने वाले बच्चे को आप समान बनाते हैं और फिर शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। 35 करोड़ देवताओं में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि उसे एक साकार की बच्चे हैं। परंतु उसका कोई बाप नहीं है, उसका गायन भी है। हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव, मुसलमानों में कहते हैं आदम, क्रिश्चियंस में कहते हैं एडम। स्थान भेद के कारण थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया है भाषण। तो रथ को जरूर याद करना पड़ता है, जबकि बाप है। रथ बिगर भवकेगा तो नहीं। लेकिन से कि बिना रथ के सोल भटकती है, उनको भूत प्रेत कहते हैं। परंतु बाप का तो मुकर्रर रथ है, वो कोई भूत प्रेत बनता नहीं है। फिर भी भूत प्रेतों को कंट्रोल करने वाला है, भूत प्रेतों की दुनिया को बस में करने वाला है, इसलिए भूतनाथ कहा जाता है। तो आत्मा खुद कहती है मेरा ये एक ही रथ है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। तुम आत्माएं पहले पहले छोटे रथ में प्रवेश करती हो, गर्भ में, और मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं तो बड़े रथ में प्रवेश करता हूं। यहां तुम बच्चे आते हो, सन्मुख सुनते हो, बाहर में समझते होंगे कि बाबा की मुरली आवेगी फिर हम सुनेंगे। तो समझेंगे कि बाप मुरली बजावेंगे तो जरूर यहां होंगे, इस दुनिया में ही होंगे ना। सभी की नजर जरूर मधुबन में जाएगी, बाबा मधुबन में है, अभी वहां मुरली चलाता होगा। और बच्चे बाबा से सन्मुख मुलाकात करते होंगे तो उनका बुद्धियोग मधुबन में ही होगा। इसलिए शास्त्रों में भी मधुबन का नाम गाया हुआ है। मधुबन में मुरलिया बाजे, बाकी दिल तो सभी की होती है कि हम मधुबन में बैठ बाप की मुरली सुने। तुम बच्चों को ज्ञान है और उस ज्ञान की पहली पहली मुख्य बात है मन बना भव। उसके लिए अलफ को पक्का याद करना है, नहीं तो मनमना भव का ज्ञान टिक नहीं सकता। मुकर्रर रथ के द्वारा ही कहते हैं मनमना भव, मेरे मन में समा जाए, नहीं तो सुप्रीम सोल बाप का मन होता है क्या है? वो बुद्धिमानों की बुद्धि गाया हुआ है या उसका मन रूपी घोड़ा भटकने वाला है? वो तो मन को कंट्रोल करना सिखाता है, खुद सदैव अमन है, अमन चैन में शांति का सागर है, शांति धाम का रहने वाला है। हम बच्चों को भी आकर के अमन बनाते हैं, तब हम स्वर्ग में अमन चैन की जिंदगी बिताते हैं। परंतु उसके लिए अलफ को पक्का पक्का याद करना है। पक्का क्यों कहा है? इसलिए कहा कि अगर अंश मात्र भी कंचापन होगा तो माया भुलाए देगी, मुकरर रथ से बुद्धि को हटाए देगी, निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बन पड़ेगी। तो पहले पहले आपको अलग को पक्का याद करो, फिर बे को याद करो। अलग और बे बस, बे कौन हुआ, अलग कौन हुआ है? अलग खड़े डंडे को कहा जाता, बे बड़े डंडे को कहा जाता, कौन हुआ अलग? जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं और बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, उस समय से लेकर के अंत तक, जब तक इस पुरानी सृष्टि का विनाश हो, नई दुनिया की स्थापना हो, तब तक वो अलफ पुरुषार्थ में खड़ा रहता है। कोई माया की ताकत या कोई प्रकृति की ताकत उसको गिराए नहीं सकती। इसलिए कहा अलग को पक्का याद करो, पक्का आधार पकड़ेंगे तो ये दुनिया जो विषय सागर है, विषय वैतरणी नदी है, उसके पार जावेंगे। भक्ति मार्ग में गायन भी है, शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार नर, उड़ सकल संसार। सिखों में भी गायन है, नानक चाप जहाज। अब नानक तो कोई सदगुरु को नहीं कहेंगे, सदगुरु वो जो सारी दुनिया की सदगति करे। नानक के आने के बाद तो दुनिया की दुर्गति हुई है 500 वर्ष के अंदर, या मनुष्यों की मेंटेलिटी ऊपर उठी है, दुर्गति होती है। सिर्फ नानक की बात नहीं है, सभी देहदारी धर्म पिताओं की यही बात है। और गुरु तो अनेक होते हैं, सिख लोग गाते भी हैं एक सदगुरु निराकार, जो एक निराकार है वो तो जरूर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होगा, और आत्माओं को मनुष्य से देवता बना देगा। देवताएं भी निराकारी स्टेज में रहने वाले होते हैं, निरहंकारी होते हैं, देवताओं में विकार नहीं होते हैं, इसलिए पूजे जाते हैं। तो जो जैसा होगा वैसा ही बना देगा। एक बाप ही सृष्टि में ऐसा है, और वो भी आत्माओं का बाप है, जो मनुष्यों को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बना कर जाता है। अलग और उसके बाद बे, बाकी पे टे ते से ढेर को याद करने की दरकार बिल्कुल नहीं। बे के द्वारा ही राजाई का सारा समाचार सुनाते। तुम कैसे राजाई लेते हो और कैसे राजाई गंवाते हो वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। कैसे लेते हो है? तुम राजाई लेते हो राजयोग से, और ये राजयोग का ज्ञान बाप गीता ज्ञान द्वारा ही सुनाते हैं। गीता का भगवान बाप तो द्वापर के अंत में नहीं आते हैं, जो पापी कलयुग की स्थापना करके चले जावे, वो तो आते ही हैं कल्प के अंत में। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों का जब आवर्तन हो जाता है तब अंत में आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं। अच्छा।